आर्यन राजवंश के घर के स्टडी रूम में उस वक्त अजीब सी गंभीर खामोशी छाई हुई थी। भारी पर्दों के पीछे से आती हल्की सी रोशनी कमरे में बैठे लोगों के चेहरों पर चिंता और सख्ती दोनों साफ दिखा रही थीं। आर्यन, सानवी, इंदर और शिव मेहता टेबल के चारों ओर बैठे थे। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक ऐसा प्लान था जिसमें एक छोटी सी चूक भी सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। लॉन में जय खेल रहा था, उसकी हंसी की आवाज़ कभी कभी अंदर तक आ जाती, जैसे याद दिला रही हो कि इस घर में मासूमियत अभी जिंदा है। उसके पास उसकी नैनी थी जो हर पल उस पर नज़र रखे हुए थी। इंदर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें विक्रांत को गिरफ्तार करने से पहले सबसे बड़ी सावधानी जेसिका को लेकर बरतनी होगी, वो यही नहीं रह सकती। आर्यन ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए गंभीर आवाज में कहा, इंदर, किसी भी बहाने से एक बार तुम जेसिका को अपने साथ यहाँ ले आओ, बहाना कोई भी हो, मॉर्निंग वॉक, ब्रेकफास्ट या कुछ और, बस उसे यहाँ ले आना। एक बार वो आ गई फिर हम उसे वापस नहीं जाने देंगे। आर्यन के चेहरे पर सख्ती थी लेकिन आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व भी। सच ये था कि उसे जेसिका बिल्कुल पसंद नहीं थी, आखिरकार वही थी जिसने विक्रांत को उनकी दुनिया में दाखिल किया था, उसी की वजह से इतनी उथल पुथल मची थी। लेकिन फिर भी वो इंदर की बहन थी और आर्यन ये किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि जेसिका को जरा सी भी चोट पहुंचे या वो किसी खतरे में पड़े। इंदर ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कल सुबह उसे मॉर्निंग वॉक के बहाने ले आऊंगा, उसे शक तक नहीं होने दूंगा। शिव मेहता, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, ठंडे लेकिन भरोसेमंद अंदाज में बोले, एक बार विक्रांत गिरफ्तार हो गया तो फिर उसके बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसी बीच सानवी, जो अब तक आर्यन को खामोशी से देख रही थी, अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज़ में डर भी था और अपनापन भी। मैं सोच रही थी, फिर वो आर्यन की तरफ मुड़ी और साफ साफ कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं करता आपको ऐसे अकेला छोड़ने का। आर्यन उसकी तरफ देखने लगा। सानवी ने आगे कहा, जय के साथ मैं कीर्ति और रिया को भेज दूंगी, वो दोनों के साथ बहुत खुश रहता है, लेकिन आप, उसकी आवाज़ हल्की सी भर्रा गई, आपको छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लगता। कमरे में एक पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा किसी डर का नहीं बल्कि उन रिश्तों का था जो इस पूरे प्लान से कहीं ज्यादा अहम थे। तुम बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? आर्यन में सामने देखते हुए सख्त मगर बेचैन आवाज में कहा, तुम जहां भी रहोगी मुझे हर पल तुम्हारी फिक्र रहेगी। मैं तुम्हें जय के साथ एक बार किसी सेफ जगह भेज दूंगा तो कम से कम मेरा दिमाग शांत रहेगा, मेरा स्ट्रेस कम होगा। वो पल भर रुका, फिर धीमी लेकिन टूटती सी आवाज में बोला, सानवी, मेरे पास जय और तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। सानवी की आंखें नम हो गईं, उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मेरे पास भी तो आपके सिवा कोई नहीं है आर्यन, मेरे पास भी आपके सिवा सच में कोई नहीं है। उसकी आवाज़ में न शिकायत थी न जिद, बस डर और प्यार का मिलाजुला सच। कमरे का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया था, तभी शिव मेहता ने जानबूझकर हल्के अंदाज में कहा, अगर तुम दोनों की लव स्टोरी पूरी हो गई हो तो हम आगे की बात करें। उनकी बात सुनते ही आर्यन और सानवी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर एक साथ हंस पड़े। वो हंसी जरा सी शर्मीली थी, जरा सी सुकून भरी, जैसे तनाव के बीच एक छोटा सा ब्रेक। इंदर को समझने में देर नहीं लगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ दोनों को देखा। ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं रहा था, इस रिश्ते में भरोसा था, डर था और एक दूसरे को खो देने का खौफ भी। ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था, शायद वहां तक जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। इंदर ने बात को फिर से मुद्दे पर लाते हुए कहा, लेकिन कीर्ति और रिया का क्या? हमें इन दोनों को भी तो जय के साथ भेजना होगा। फिर वो थोड़ा गंभीर हो गया, मगर कीर्ति, वो किसी की बात मानती ही नहीं है, वो इतनी जिद्दी है कि खुद के साथ साथ जय और रिया को भी मुसीबत में डाल सकती है। उसने सानवी की तरफ देखते हुए चिंता भरी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना उसे संभालना आसान नहीं होगा, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बिना वहां टिक पाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें अब सानवी को भाभी कहना चाहिए, आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फिर सामने बैठे इंदर की तरफ देखते हुए जोड़ा, सही कह रहा हूं ना मैं? ये कहते हुए आर्यन ने सानवी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी पकड़ में अपनापन था, हक था और वो भरोसा भी, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। सानवी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। बिल्कुल, वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, अब मुझे भाभी ही कहो, हमारा रिश्ता अब सिर्फ फॉर्मेलिटी का नहीं रहा है। वो पल भर रुकी, फिर साफ साफ कहा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी और ना ही दिखावे की शादी, हमारी शादी असली है, दिल से, इरादों से और रिश्तों से। शिव मेहता ने हल्की शरारत के साथ इंदर की तरफ देखा और कहा, वैसे तुम्हें कृति की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही? इतना कहते ही पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। आर्यन मुस्कुरा रहा था, सानवी की आंखों में शरारत चमक रही थी और शिव मेहता तो जैसे मौके की तलाश में ही थे। इंदर अचानक थोड़ा असहज हो गया, वो इधर उधर देखने लगा जैसे किसी को सीधे जवाब देने से बच रहा हो, लेकिन सच्चाई सबको दिख रही थी और सबसे ज्यादा उसे खुद को। हाँ, उसे कृति की फिक्र हो रही थी और ये फिक्र आज की नहीं थी। इतने दिनों तक साथ रहना ये सब कब आदत बन गया उसे खुद पता नहीं चला। कृति की सबसे खास बात यही थी कि वो सामने वाले को स्पेस देती थी, न जरूरत से ज्यादा सवाल न बेवजह का अधिकार, बस एक सहज सी मौजूदगी जो बिना बोले भी साथ निभा ले। शायद इसी वजह से कृति ने कब इंदर के दिल में अपनी जगह बना ली ये उसे समझ ही नहीं आया। हंसी के बीच भी इंदर के चेहरे पर एक हल्की सी गंभीरता आ गई थी। वो जानता था कुछ रिश्ते अचानक नहीं बनते, वे चुपचाप धीरे धीरे दिल में उतरते हैं और कभी कभी इन्हीं रिश्तों की फिक्र सबसे ज्यादा सताने लगती है। कमरे में मौजूद हर इंसान ये बात महसूस कर रहा था। ये सिर्फ प्लान्स और स्ट्रैटेजी की मीटिंग नहीं थी, ये उन रिश्तों की कहानी थी जो अनजाने में ही जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाते हैं। ये लो बेटा तुम्हारे लिए, रेहाना बेगम ने प्यार से नूर की तरफ एक सूट बढ़ाते हुए कहा। और हाँ, मेरा फोन नंबर भी नोट कर लो, कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे फोन कर लेना, ठीक है? नूर की आंखों में चमक आ गई। उसने झुककर सूट लिया और खुश होकर बोली, जी शुक्रिया आंटी। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी, जैसे किसी ने उसे सिर्फ तोहफा नहीं अपनापन दिया हो। उसी वक्त लॉन की तरफ से रेहान और अरमान आते दिखाई दिए। दोनों अभी अभी बाहर से आए थे और आते ही वहीं खड़े हो गए। मॉम, कोई प्रॉब्लम है क्या? रेहान ने चारों तरफ नजर डालते हुए पूछा। रेहाना बेगम ने हल्के से लहजे में जवाब दिया, नहीं बेटा, बस ड्राइवर अभी तक आया नहीं है, तुम्हारे इकबाल भाई को निकलना था। नूर ये सुनकर चुप रही, लेकिन उसकी नजर अनजाने में अरमान पर टिक गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। उधर अरमान बार बार इधर उधर देखने लगा जैसे उसकी नजर से बचना चाहता हो। रेहाना बेगम नूर को साथ लेकर वापस अंदर चली गई। इकबाल भाई और फरीद खान दोनों गेट तक उन्हें छोड़ने चले गए। लॉन में अब सिर्फ सादिया खड़ी थी। वो लगातार अरमान को देख रही थी, इतनी गौर से कि अरमान को खुद असहज महसूस होने लगा। तुम्हें क्या हुआ है? अरमान ने आखिरकार पूछ ही लिया। किस बात के लिए? उसने हैरानी से पूछा। सादिया ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, देख लेना ताई अम्मी जाकर तुम्हारी मॉम से शिकायत करेंगी। अरमान ने हल्की हंसी के साथ बात टालनी चाही, सीरियसली मैं सॉरी कहूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। बात करते करते दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते से वे अंदर आ रहे थे वहीं नूर खड़ी हुई थी।